हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 1-9। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थोमः श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न परा वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि। करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिबस्व मृतुमेत देव गोविंद दामो धरमाधवेति बर्हापीरं नटवरवपुकर्णियो कर्णिकार बिभ्रात्वासः कनकपिशं वैजन्तीं च माल्यम् रन्ध्राण्वेणोरदरसुधया पूर्णयोगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत्कीर्तकीर्ति अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिंघासयापा ययदप्यसात्वी लेभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेन। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन छोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 3 जिसका शीर्षक है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। वास्तव में भक्तों, जीव का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, और वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, भगवत कथा को श्रवण करना, वो भी शुद्ध वैष्णवों के मुख से। तो आज उद्धव जी वृंदावन से बाहर, के कल तक हमने पढ़ा कि वृंदावन में भगवान ने किस तरह से लीलाएं की, और जाने से पहले अपनी प्रियतमाओं के साथ रासलीला करने के उपरांत अक्रूर जी आए और कृष्ण को वृंदावन से लेके गए। यूं तो कन्हैया कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, एक कदम भी वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं, परंतु सांसारिक दृष्टि से वो वृंदावन से पुनः मथुरा की ओर चले गए थे। तो अब वृंदावन से बाहर की लीलाएं हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। कृपया इन अत्यंत ही उद्धव उवाच तत स आज्ञात्य पूरम विपत्रो चिकीर्षयाशं बलदेव संयुत निपात्य तुंगात् रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षत् व्यसुमोजसूर्यां ततः स आगात्य पुरं स्वपित्रोश चिकीर्षयाशं बलदेव संयुत निपात्य तुंगात् रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षत् व्यसुमोजसौर्यां। उद्धव उवाच, अर्थात उद्धव ने कहा, ततः स आगात्य पुरं स्वपत्रो, ततः अर्थात उसके उपरांत, स भगवान आज्ञात आकर पुरम अर्थात मथुरा नगरी में, स्वपित्रो अपने माता पिता की, चिकीर्षयाशं बलदेव संयुत, चिकीर्षया चाहते हुए, शम अर्थात कुशलता, बलदेव संयुत बलदेव के साथ, निपात्य तुंगात, निपात्य नीचे खींचकर, तुंगात सिंहासन से, रिपु यूथनाथ जनता के शत्रुओं के मुखिया, हतम मार डाला, और उसके उपरांत व्यकर्षता खींचा, व्यसुम यानी मृत, ओजसाम बल से, और व्यम पृथ्वी पर। अनुवाद, श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत ही बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर कंस की मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन हुआ है, क्योंकि ऐसी लीलाएं दशम स्कंद में स्पष्टतया से और विस्तार से वर्णित हैं। भगवान अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी फिर याद करा रहे हैं कि ये सब हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं, और डिटेल से कब पढ़ेंगे, जब कृष्ण कृपा से हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर संक्षिप्त में इन लीलाओं का वर्णन है, तो उनको हम उसी तरह से आस्वादन करेंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने को माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। दोनों भाई कृष्ण तथा भगवान बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिसने उनके माता पिता वसुदेव तथा देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रखा था। कंस एक विराट दैत्य था और वसुदेव एवं देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्ण तथा बलराम इतने बड़े तथा बलवान शत्रु का संहार कर सकेंगे। जब दोनों भाइयों ने सिंहासन आरूढ़ कंस पर आक्रमण किया तो उनके माता पिता डर गए कि अब कंस को हमारे उन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा जिन्हें हमने इतनी दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। भगवान के माता पिता संतति के प्रति स्नेहवश अत्यधिक त्रास का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित से हो गए थे। उन्होंने उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए कृष्ण तथा बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही इसके मृत शरीर को धरती पर घसीटा। शिला प्रभुपाद देखिए, यहाँ शिला प्रभुपाद जी देवकी और वसुदेव के विषय में बता रहे हैं कि क्योंकि उनकी इच्छा थी, उन्होंने भगवान जैसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की थी, तो भगवान जब पुत्र के रूप में आए तो उनके हृदय में वही भाव प्रदान किया कि मैं आपका पुत्र हूँ। कभी उनको ऐसा लगता नहीं था कि वो भगवान हैं। और जब वो कृष्ण जो साक्षात भगवान त्रिभुवन के स्वामी, वो कंस को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु देवकी और वसुदेव इतना स्नेह कर रहे थे कि वो सोच रहे थे कि बस कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए, कृष्ण सुरक्षित होना चाहिए। इसीलिए तो इतने समय तक उन्होंने नंदगांव में नंद महाराज के पास उन्हें भेजा था। वो भयभीत थे कि कहीं हमारे कृष्ण को कुछ क्षति ना पहुंचे, परंतु अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस अन्यायी कंस को मारा था। वास्तव में भक्तों, हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर सबसे बड़ा अधिकार यदि किसी का है तो हमारे माता पिता का है। क्योंकि आज हम जिस भी स्थान पर हैं, जो भी प्राप्त किया है, जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? यह मनुष्य देह। और यह मनुष्य देह हमको भगवान के द्वारा भी यदि प्राप्त हुई है तो भी माता पिता के माध्यम से ही हुई है। तो एक जीव को भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि जीव को सदैव अपने माता पिता का ऋणी होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ने तो छोटी सी आयु में ही अपने माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया था। वो भगवान थे, वो हमारे लिए उदाहरण प्रस्तापित करना चाहते हैं कि एक संतान की का ये कर्तव्य है कि वो माता पिता को सुख प्रदान करे, उनको आनंद प्रदान करे और कभी भी उनके दुख का कारण ना बने। ये हमारे शास्त्र ही नहीं, हमारे भगवान भी सिखाते हैं। क्योंकि माता पिता यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने माता पिता को अपने कार्यों से प्रसन्न कर सकें। आगे उद्धव जी कहते हैं, भगवान हर क्षण अपने वास्तविक स्थिति में कार्य करते थे। दिखने में वो लग रहे थे वो छोटे से हैं, लेकिन वो कार्य एकदम अद्भुत करते थे। और कंस को मारने के उपरांत जब माता पिता ने उन्हें गुरुकुल में भेजा तो सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में वो एक ही बार पढ़कर 64 दिन में 64 कलाओं को सीख गए। और जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो कृष्ण ने कहा गुरु महाराज से कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूँ। तब संदीपनि गुरु ने कहा, आप जैसा शिष्य प्राप्त हुआ और क्या किसी वस्तु की आवश्यकता रह गई है? अब और कुछ पाना क्या श्रेष्ठ रह गया है? कृष्ण ने कहा, नहीं गुरु महाराज, यदि दक्षिणा नहीं दूंगा तो यह शिक्षा मुझे कार्य समय पर फलीभूत नहीं होगी। मुझे आप अवश्य कुछ न कुछ दो, गुरु दक्षिणा के लिए मुझसे कुछ मांगिए। तब गुरु महाराज ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, आप गुरु माता से पूछ लीजिए, हो सकता है उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो। तब कृष्ण गुरु महाराज की पत्नी के पास गए और कहा, गुरु माता, आज मेरी शिक्षा संपूर्ण हुई और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको गुरु दक्षिणा के तौर पर मैं क्या दूँ। तब गुरु माता ने कहा, कृष्ण
संसार कहता है कि तुम भगवान हो, क्या तुम वाकई में भगवान हो? तब कृष्ण ने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि गुरु दक्षिणा में आप जो बोलोगी वो मैं आपको अवश्य प्रदान करूँगा। तब गुरु माता ने कहा, अगर तुम भगवान हो तो तुमसे साधारण क्या वस्तु कोई मांगने, तुम दे सकते हो तो मेरे मृतिक पुत्रों को, आप लेके आओ। वास्तव में संदीपनी गुरु का एक पुत्र था, वो बालिकों के साथ पिकनिक पर गया था दरिया के किनारे और फिर वापस आया ही नहीं, तो उसी पुत्र को मांगा था। और भगवान ये सिद्ध करते हैं कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ और उस मृतिक पुत्र को लेकर आए। ये सब घटना याद करते हुए उद्धव जी कहते हैं, सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादात्वरं पुत्रं मृतं पञ्च जनयोदरात् सान्दीपने सकृत् प्रोक्तं ब्रह्मादित्य सविस्तरं तस्मै प्रादात्वरं पुत्रं मृतं पञ्च जनयोदरात् सान्दीपने सकृत प्रोक्तम। सांदीपने अर्थात सांदीपनि मुनि के सकृत केवल एक बार प्रोक्तम कहा गया ब्रह्म, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं समेत सारे वेद अधित्य अध्ययन करके सविस्तरम विस्तार सहित तस्मय उसको प्रादात दिया वरम वरदान, पुत्रम उसके पुत्र का मृतम मरे हुए, पंचजन्य मृत आत्माओं का क्षेत्र उदारात, उदारात अर्थात उसके भीतर से। अनुवाद, भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनि मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते, एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जो अपने गुरु के मुख से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं में पारंगत हो सकते हैं। यमराज के क्षेत्र में आत्मा के चले जाने पर कोई व्यक्ति मृत शरीर को जीवित नहीं कर सकता है, किंतु भगवान कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहस किया और अपने गुरु के मृत पुत्रों को ढूंढा तथा उसे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के तौर में रूप में सौंप दिया। भगवान स्वभावतः सारे वेदों में सिद्ध हस्त हैं, किंतु सबों के समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कि प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि की सेवा की और भगवान की शक्ति को समझ कर के ही मुनि ने ऐसी वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव था। गुरु ने कहा उसका मृत पुत्र लाकर के उसे दे दिया जाए और भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा किया। अतः भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि भगवान को आवश्यकता नहीं है कि वो किसी गुरु के पास जाकर विद्या या अध्ययन करें, क्योंकि भगवान तो समस्त वेदों में सिद्ध हस्त हैं। भगवान को सारे वेद, भगवान की श्वासों से वेद प्रकट हुए, उन्हें क्या आवश्यकता है? इसीलिए रामायणकार लिखते हैं, जिन जाके श्वास वेद श्रुतिचारी सो हरि पढ़े यह कौतुक कुमारी। वो भगवान जिसके सांसों से वेदों का प्राकटन वो यदि पढ़ने के लिए किसी गुरुकुल में आते हैं तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। लेकिन भगवान हम जैसे साधारण व्यक्तियों को दिखाने के लिए कि यदि जीव को वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे गुरु महाराज की शरण ही ग्रहण करनी होती है, प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और उसके उपरांत सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने सांदीपनि मुनि की गुरु के पाठशाला में पढ़ा और गुरु की बहुत सेवा की। वो भगवान होकर भी गुरु के सारे कार्य करते थे, जंगल से जाकर उनके लिए लकड़ियाँ लेके आते थे और उसके उपरांत भी वहाँ सफाई का काम और सारे काम करते थे। और जब पूरी शिक्षा पूरी हुई तो गुरु महाराज को वो दक्षिणा दी जो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जिंदा लोग को तो कोई भी मार सकता है ना, मारने का कार्य कोई भी कर सकता है, परंतु मरे हुए को जलाने का काम केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। उसके उपरांत जब भगवान ने समस्त शिक्षाएं ग्रहण कर ली, उसके उपरांत भगवान के विवाह के विषय में बताते हुए उद्धव जी कहते हैं, समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रेय स्वर्णेन भूभूषयेषां गंधर्ववृत्या मिषतां स्वभागं जरे पदमो निधदसुपर्णम् सामा हुता भीष्मक कन्यया ये श्रेय सवर्णेन भूभूषयेषां गांधर्ववृत्या मिषताम स्वभागम जेरे पदम मूर्नि दधत सुपर्णा। समाहुता अर्थात आमंत्रित, भीष्मक कन्यया ये, भीष्मक कन्या अर्थात दादा भीष्मक की कन्या यानी पुत्री के द्वारा ये जो श्रेय सवरण सवर्णेन श्रेय अर्थात संपत्ति सवर्णेन उसी तरह के क्रम में भूभूषया ऐसा होने की आशा से एशाम उनका गांधर्ववृत्या मिषताम स्व गांधर्ववृत्या अर्थात ब्याह की वृत्या ऐसी प्रथा द्वारा गंधर्व विवाह जिस तरह से किया जाता है मिषताम ले जाते हुए स्वभागम अपना हिस्सा जेरे पदम अर्थात ले गया पदम अर्थात पांव मूर्नी धदत स्वपर्णम मूर्नी मतलब सिर पर धदत रखते हुए स्वपर्णम गरुड़। एक बार गरुड़ ने जिस तरह से अमृत ले लिया था उसी प्रकार भगवान भीष्मक कन्या की आमंत्रण पर वो वहाँ से जहाँ पर अनेकों राजा और राजकुमार उनके लिए आए हुए थे वहाँ से भगवान और अपनी लक्ष्मी रुक्मणी को वहाँ से लेके आए। वे कहते हैं, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकर्षित होकर उन अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्रित हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पिछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि राजा भीष्मक की पुत्री कुमारी रुक्मणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे रंग तथा गुण दोनों में ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। चूंकि लक्ष्मी जी भगवान की संपत्ति है अतः रुक्मणी वास्तव में कृष्ण के ही निमित्त थी, किंतु रुक्मणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मणी ने शिशुपाल के चुंगल से अपने को छुड़ाने के लिए कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दूल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया तो कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पिछाड़ते हुए रुक्मिणी को वहां से ऐसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ असुरों के हाथ से अमृत ले गया था। इस घटना की स्पष्ट विवेचना दशम स्कंद में की जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों का, अपने प्रेमियों का सदैव ध्यान रखते हैं। संसार चाहे उनके कितना ही खिलाफ हो जाए, कुछ भी उनके सामने कितनी ही विकट स्थिति क्यों ना आए, परंतु भगवान उन भक्तों को अवश्य बचाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं जो हृदय से उनको पुकारते हैं। और वो रुक्मिणी के आमंत्रण पर आए और समस्त राजाओं के बीच में से रुक्मिणी को वहाँ से लेकर गए। उसके उपरांत उद्धव जी बता रहे हैं, कुकुत मिनो वेद धनसो दमन्त्वा स्वयं वरं वरे नाग्न जीतिम उवाह तद्भग्नमानानपि कृत्य दोक्यान् जिग्नेक्षत शस्त्रवृत स्वशस्त्रे कुकुत मिनो वेद धनसोधमित्वा स्वयं वरे नाग्न जीतिम उवाह तद्भग्नमानानपि कृद्य तोख्यान् जग्नेक्षत शस्त्रभृत स्वशस्त्रे कुकुत्मिना अर्थात बैल जिनकी नाक छिदी हुई नहीं थी, अविद्धर नस अर्थात नाकें सीधी हुई, दमित्वा दमन करके, स्वयंवरे दुल्हन चुनने के लिए खुली स्पर्धा में नाग्न जीतिम राजकुमारी नाग्न जीति को विवाह मतलब ब्याह और तद भग्नमान अर्थात इस तरह निराश हुओं को अपि यद्यपि गृत्य चाह अज्ञान अर्थात मूर्खजन जगने अर्थात मारा तथा घायल किया, अक्षत बिना घायल हुए, शस्त्रभृत सभी हथियारों से लेस स्वशस्त्र अपने हथियारों से। अनुवाद, बिना नथ वाले सात बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नाग्न जीति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। अतः भगवान शस्त्रों से अच्छी तरह लेस थे, भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। ये जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह राजकुमारी नाग्न जीति जो कि कौशल देश की राजकुमारी थी उनके साथ हुआ, उस घटना को याद करते हुए उद्धव जी बता रहे हैं कि नाग्न जीति राजकुमारी जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की महिमा को, गुणगान को श्रवण करके हृदय से उनको अपना पति मान चुकी थी, बहुत प्रेम करती थी उनसे। और जो भी उन्होंने तपस्या और यज्ञ व्रत इत्यादि किया वो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया। और उनके पिताजी की भी यही इच्छा थी कि कृष्ण ही उनके दामाद बने, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा था जिसमें ये स्पर्धा थी कि जो भी सात बेलों को, जो कि बिना नथे हुए सात बेल हैं, तो उनको यदि नथेगा तो उसके साथ ही मैं अपना विवाह, अपनी पुत्री का विवाह करवाऊंगा। तो बहुत सारे राजकुमार आए थे जो कि इच्छा करते थे नाग्न जीति से विवाह करने की, परंतु कोई भी इस कार्य में सफल न हो सका। और क्यों रखी गई थी ये स्पर्धा, क्योंकि वो जानते थे, महाराजा कौशल राजा ये जानते थे कि केवल कृष्ण ही कर सकता है। ये बेल जो होते हैं, वो जो सांड होते हैं जिनको पहले से नथा हुआ नहीं जाता है, वैसे तो जो बैल होते हैं उनको छोटे ही, जब वो छोटे होते हैं तभी उनकी नाक में ऐसे दो नथने हैं, उनके बीच का जो हिस्सा है उसमें एक लोहे का कड़ा डालकर उसको नाथ दिया जाता है ताकि कोई भी उससे बैल से खेती करवा सके। लेकिन जो सांड होते हैं उनको जो है ना वो नथना बहुत संभव नहीं है, वो तो ऐसे उच्छृंखल होते हैं, वो हाथ में आने वाले नहीं होते। तो ऐसे सात बैलों को एक साथ नतना कोई साधारण कार्य नहीं था और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही सरलता से इनको नथ लिया और राजकुमारी बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपनी वरमाला पहनाई। परंतु जो दूसरे प्रत्याशी आए थे जो कि विवाह करने की इच्छा उनको बहुत बुरा लगा और वो भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आए। भगवान ने सबके साथ युद्ध किया और किसी को घायल किया तो किसी को मार डाला, परंतु भगवान को कोई क्षति ना पहुंची और वो बड़े ही आनंद के साथ विवाह करके अपनी राजधानी में पुनः लौट आए। और उसके उपरांत और विवाह के उपरांत भगवान अपनी पत्नियों को सदैव प्रसन्न करने का प्रयास करते थे, जिस तरह से साधारण पति करते हैं। उद्धव जी बताते हैं, प्रियं प्रभु ग्राम्य एव प्रियाया वेदित सुराच्छत द्युतरूम यदर्थे वज्र्याद्रवत्तम सगणोरुषांध क्रीडामृगो नूनमायं वधूनां। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया वेदित सुराच्चत्युतरुं यदर्थे वज्राद्रवत्तं सगणोरुषांध क्रीडामृगो नूनमायं वधूनां। प्रियं प्रभु ग्राम्य इव, प्रियम अर्थात अपनी प्रिय पत्नी के प्रभु यानी स्वामी, ग्राम्य यानी सामान्य जीव, एव यानी सदृश, जिस तरह साधारण सामान्य जीव करता है, प्रियाया प्रसन्न करने के लिए विदोत्सु चाहते हुए आर्चित अर्थात ले आए। क्या लेकर आए? साधारण जो नहीं ला ले कह सकते, द्यूतरुम अर्थात परिजात पुष्प का वृक्ष, यद अर्थ है जिसके विषय में वज्री स्वर्ग का राजा इंद्र आद्रवत्तम उससे लड़ने आया। अब स्वर्ग से जब वो पारिजात लेकर आए तो इंद्र जो है वो भगवान से युद्ध करने आया और सगण दल बल सहित रुषा क्रोध में अंध अंधा होकर क्रीडा मृग कठपुतली नूनम निस्संदेह अयम यह वघूनाम स्त्रियों का। तो यहाँ पर भगवान की माया इतनी प्रबल है कि ब्रह्मा और इंद्र को भी मोहित कर लेती है। भगवान ने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए पारिजात वृक्ष जो स्वर्ग से लाया तो इंद्र बहुत ही क्रोध में आ गया और भगवान के साथ युद्ध करने उसका पीछा किया। अनुवाद देखिए, अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है, किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री वश था, लड़ने के लिए दल बल सहित भगवान का पीछा किया। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार जब भगवान देवताओं की माता अदिति को कान के कुंडल भेंट करने स्वर्ग गए थे तो उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई थी। पारिजात नामक एक विशेष पुष्प वृक्ष केवल स्वर्ग में ही उगता है। सत्यभामा ने इस वृक्ष को लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सामान्य पति की तरह वह वृक्ष अपने साथ ले आए। इससे वज्री अर्थात वज्र का नियंता इंद्र कुपित हो उठा। इंद्र की पत्नियों ने उसे युद्ध करने के लिए भगवान का पीछा करने को उकसाया। चूंकि इंद्र स्त्री वशपति था और मूर्ख भी था, अतः वह उनके कहने में आ गया और उसने कृष्ण के साथ युद्ध करने का दुस्साहस किया। वह इस अवसर पर मूर्ख बना क्योंकि वह भूल गया कि प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है। इंद्र की पत्नियों ने इंद्र को बोला, ये कृष्ण होता कौन है हमारे घर से हमारा एक वृक्ष लेकर जाने वाला, जाओ उसके साथ युद्ध करो। और इंद्र भूल गया कि सब कुछ भगवान का है। और यदि भगवान अपने ही वस्तु को ही उठा के जाता है तो उसमें तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो भगवान की ही है। परंतु वो उसे इस समय याद नहीं आया। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि अभी भगवान स्वर्ग लोक से वृक्ष ले आए थे किंतु इसमें इनका कोई दोष नहीं था, फिर भी शची जैसी सुंदर पत्नियों का वशीभूत इंद्र स्त्री वश होने से मूर्ख बना, जिस तरह स्त्री के वश में रहने वाले सामान्य व्यक्ति मूर्ख होते हैं। इंद्र ने सोचा कि कृष्ण स्त्री वश पति है, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा मात्र से स्वर्ग की संपत्ति का हरण किया, अतः उसने कृष्ण को दंड देने का सोचा। वह ये भूल गया कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और वे स्त्री वश नहीं हो सकते। भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं और इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियों पा सकते हैं। अतः वे सत्यभामा पर इसलिए अनुरक्त नहीं थे कि वह सुंदर पत्नी थी, अपितु वे उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। अतः वे अपने भक्त की शुद्ध भक्ति का प्रतिदान देना चाह रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इंद्र को तो लग रहा था कि भगवान भी स्त्री वश हो गए और स्त्री की इच्छा पूरी करने के लिए ये भी नहीं सोचा कि स्वर्ग की संपत्ति पारिजात को मैं कैसे लेके जाऊं। लेकिन भगवान अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इसी तरह से वो सत्यभामा की प्रेममय भक्ति से प्रसन्न थे और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो स्वर्ग से लेकर भी आए थे तो भी वो कोई स्वर्ग की संपत्ति नहीं या इंद्र की संपत्ति नहीं था, क्योंकि वो स्वर्ग ये 14 भवन और पूरी त्रिलोकी के नाथ कृष्ण है, वो किसी भी वस्तु का उपयोग अपने लिए कर सकते हैं। तो इस तरह उद्धव जी विदुर को भगवान के समस्त विवाहों के विषय में, उनके ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। बाकी की कथा हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।